नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान कल नहाए खाए के साथ शुरू होगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ घाटों पर तैयारियां अंतिम चरण में। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाले पैक्स चुनाव के दिन मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया। और प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 153 नए मामलों की पुष्टि। पटना में मिले 69 नए मरीज। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान कल नहाए खाए के साथ शुरू होगा। व्रती पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। छठ घाटों तक जाने वाले मार्गों को समतल करने के साथ बैरिकेडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि पटना स्मार्ट सिटी के 190 से अधिक कैमरों से 2400 घंटे छठ घाटों की निगरानी की जाएगी। वहीं एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र से भी पल पल की निगरानी रखी जाएगी। इधर औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध चार दिवसीय छठ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि देव छठ मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। महापर्व छठ के दौरान अर्घ्य वाले दिनों में पटना में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी। 7 नवंबर की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि 8 नवंबर की सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इस दौरान अशोक राजपथ पर करगिल चौक के पूरब दीदारगंज तक किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा। सिर्फ व्रतियों की गाड़ियां चिन्हित पार्किंग स्थलों तक जा सकेंगी। इधर जेपी गंगा पथ पर भी 7 नवंबर से 8 नवंबर की सुबह तक दोनों लेन पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जेपी सेतु पर भी सोनपुर की ओर से पटना की तरफ यातायात परिचालन नहीं होगा। रेलवे द्वारा छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुगम सफर के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे द्वारा राजधानी दिल्ली के आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इन विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर रेलवे द्वारा आज लगभग 140 रेलगाड़ी दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से परिचालित की जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश भर में अगले 5 से 7 वर्षों के भीतर रेल यात्रा एक अभूतपूर्व बदलाव से गुजरने के लिए तैयार है। नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक ट्रेन सेटों की शुरुआत और अगले साल विद्युतीकरण पूरा होने के साथ ही रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। श्री वैष्णव कोझिकोड में एक मीडिया कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,334 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से 1,100 स्टेशनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के तहत प्रोफाइल श्रृंखला में आज सुनते हैं गया जिले की इमामगंज सीट पर चुनावी माहौल के बारे में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
राजनीतिक रूप से काफी चर्चित इमामगंज की सीट पर उपचुनाव का मुकाबला रोचक है। लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खाली की है। उन्होंने इस सीट पर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए अपनी पुत्र वधू दीपा कुमारी को चुनावी मुकाबले में उतारा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने उनके मुकाबले में रोशन कुमार मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर पहले कई बार चुनाव जीत चुके उदय नारायण चौधरी को राजद ने मौका नहीं दिया। वे 1990 के अलावा 2000, 2005 और 2010 में यहां से निर्वाचित हुए थे। पहली बार चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की साख दाव पर है। पार्टी ने यहां से समाज सेवी जितेंद्र पासवान को मौका दिया है। इस विधानसभा सीट का इतिहास देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहां से 2015 से 2020 का चुनाव जीते थे। 1957 में अस्तित्व में आई इस सीट पर सबसे अधिक जनता दल ने जीत हासिल की है। इस बार के चुनाव में लगभग 3 लाख वोटर 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुर्णी, चंडेस, कलानी समेत विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी अशोक सिंह के समर्थन में कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार की जीत से लोक मोर्चा की ताकत भी बढ़ेगी। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी रामगढ़ के खजूरा और कुडारी में जनसंपर्क अभियान चलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 और 10 नवंबर को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करेंगे। श्री कुमार तय कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी जबकि 10 नवंबर को बेलागंज तथा इमामगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव के दिन मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 19,478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 531 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। प्राधिकार ने कहा है कि मतदान के दिन काम पर नहीं जाने पर अगर कोई संगठन या सरकारी संस्थान कर्मचारी का वेतन काटता है तो ₹500 का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों के परिणाम स्वरूप तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कमी आई है। श्री मोदी ने देश की प्रगति की सराहना करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज की गई है। यह दर विश्व स्तर पर 8.3% की कमी की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए कहा कि टीबी की रोकथाम और नियंत्रण भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार कर इसे सुदृढ़ किया है। प्रदेश में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान इन शिक्षकों का CTET में निर्धारित अंक से कम नंबर पाया गया है। कई शिक्षकों के जमा दिव्यांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, खेल सहित विभिन्न प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने बताया कि जिन शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है उनकी जांच संबंधित विश्वविद्यालयों से कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए 1 अगस्त से 13 सितंबर तक आयोजित काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो पाए शिक्षकों को छठ के बाद एक अवसर और दिया जाएगा। प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा के तहत 1,111 नए BTS चालू हो गए हैं। साथ ही इस महीने 4G के नए 300 BTS पूरे प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक रविन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले महीने पूरे प्रदेश में 350 नए बीटीएस की सुविधा दी गई थी। इसके साथ ही सभी बीएसएनएल ग्राहकों को डाटा स्पीड 40 एमबीपीएस तक मिलने लगेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि इस सप्ताह तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क, कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल तथा भागलपुर एवं बांका में बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान है।
प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 153 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान पटना में 69 नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7146 हो गई है। सीतामढ़ी जिले की पुलिस टीम ने बेला थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से पिस्तौल और गांजा समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा कला गांव के पास छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 660 बोतल नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकतारा गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला टीम आज गया पहुंचेगी। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बताया कि टीम के स्वागत की व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भी गया पहुंचेंगी, जहां खिलाड़ियों के प्रवास का प्रबंध किया गया है। मैच के दिन विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को गया से राजगीर ले जाया जाएगा। खिलाड़ियों के आवागमन और सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर हॉकी फैंस के लिए मैच देखने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। दर्शकों को टिकट जीनी वेबसाइट पर पास की बुकिंग करनी होगी। वहीं प्रदेश की विभिन्न जिलों की यात्रा के बाद चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा आज राजगीर पहुंचेगी। इसके बाद ये ट्रॉफी नालंदा के विभिन्न प्रखंडों से होकर गुजरेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में इस बार अक्टूबर की रात 5 साल में सबसे गर्म। दैनिक जागरण की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 को जमुई में करेंगे जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ। दैनिक भास्कर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 92 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार टीम इंडिया घरेलू मैदान पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। अखबार लिखता है, सीरीज हार से हाहाकार। बिहार बिजनेस कनेक्ट से जुड़ी खबर को प्रभात खबर ने अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, पटना में 19 और 20 दिसंबर को जुटेंगे 40 देशों के कॉरपोरेट प्रतिनिधि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ होगा शुरू। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ घाटों पर तैयारियां अंतिम चरण में। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हुआ। बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाले पैक्स चुनाव के दिन मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया। और प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 153 नए मामलों की पुष्टि, पटना में मिले 69 नए मरीज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।